दिन भर 26 जुलाई दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फदल। दिन भर चली बैठकों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा।
राज्यपाल महोदय से मिलकर
राष्ट्रपति कोविंद के दिए भाषण पर संसद में विवाद। मुलाकात कराएंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज से।
मुझे लगता है कि अभी लड़कियां वुमेन्स टीम को देख के मोटिवेट होके शायद वुमेन्स क्रिकेट को एक करियर की ऑप्शन की तरह देख सकें।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। जदयू की बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शाम को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले राजद की बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी के इस्तीफा न देने का फैसला हुआ था। इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश ने कहा कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पर ऐसा किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म बचाने की उन्होंने भरसक कोशिश की। लालू यादव के परिवार पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद से महागठबंधन में लंबे समय से काफी उथल पुथल मचा हुआ था। रूस के खिलाफ अमेरिका की ओर से संभावित प्रतिबंधों को लेकर यूरोपीय देशों ने चिंता जाहिर की है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने जो नियम पास किए हैं उससे वो कंपनियां भी प्रभावित होंगी जो रूस के ऑयल और गैस पाइपलाइन निर्माण में हिस्सा ले रही हैं। इस कानून को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। रूस ने कहा है कि इस कदम से मॉस्को वाशिंगटन के बीच में संबंध सुधरना मुश्किल हो जाएगा। नए राष्ट्रपति से जिनके चुनाव में बेशक हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमें सामान्य रिश्ते की उम्मीद थी और हम समझते थे कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे बिजनेसमैन की तरह पेश आएंगे जो अपने देश के लिए फायदा और एक संजीदा वातावरण चाहता है। दुर्भाग्य से मैं समझता हूं कि वो राजनीतिक दबाव में आ गए हैं और स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ये थे यूनाइटेड रशियन पार्टी के सांसद विताली मिलोनोव के शब्द। यूरोपीय अदालत ने अपने एक फैसले में कहा है कि पनाह चाहने वाले अप्रवासियों को सबसे पहले उस यूरोपीय देश में आवेदन करना होगा जहां वो पहले पहुंचे थे। इस फैसले से यूरोप के तमाम देशों में पहुंचे शरणार्थियों को वापस भेजा जा सकता है। इस बीच लीबिया ने इटली से निगरानी नौकाओं की मांग की है ताकि पूरे मेडिटेरेनियन में शरणार्थियों को पहुंचाने वाले जिम्मेदार लोगों से निपटा जा सके। दक्षिणी पूर्वी फ्रांस के जंगलों में प्रचंड आग लगने से 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। आग पर काबू पाने के लिए सैकड़ों लोगों को तैनात किया गया है। इससे पहले फ्रांस ने यूरोपीय संघ के देशों से आग पर काबू पाने में मदद की अपील की थी। भूमध्य सागर तट के पास 4,000 हेक्टेयर जमीन पूरी तरह आग की चपेट में है। इस समय मौसम में बड़े पैमाने पर यहाँ आते हैं इस मौसम में यहाँ बड़े पैमाने पर टूरिस्ट आते हैं। एक ब्रिटिश टूरिस्ट जॉन ग्रांट ने बताया, ये बहुत डरावना समय था। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि चारों ओर आग लगी हुई है। लगा पूरा आसमान लाल लपटों से भरा हुआ है। तब सुबह के 1:30 बजे थे। उस समय सिर्फ हेलीकॉप्टर और सायरन की आवाज़ें आ रही थीं। चारों ओर नीली बत्तियां दिखाई दे रही थीं। हम यहां 15 सालों से आते रहे हैं लेकिन ऐसा नज़ारा पहली बार देखा। ये थे ब्रिटिश टूरिस्ट जॉन ग्रांट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ट्रांसजेंडर्स को अमरीकी सेना में शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि सेना के वरिष्ठ अफसरों और विशेषज्ञों से बातचीत के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य खर्चों और अन्य दिक्कतों के चलते सेना पर भार बन जाएंगे। इससे पहले ट्रांसजेंडर्स को सेना में शामिल करने की ओबामा प्रशासन की योजना को 6 महीने के लिए टाल दिया गया था। कंबोडिया की सरकार ने उन विदेशी माँ बाप को किराए की कोख से पैदा हुए अपने बच्चों को देश से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध के बावजूद इसकी इजाज़त दे दी है। इसके लिए माता पिता को हर साल बच्चे के बारे में अपडेट देना होगा। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। अब से थोड़ी देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन को लेकर जारी विवादों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है और कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जितना संभव हो सका उतने दिन उन्होंने सरकार चलाई, अब इस माहौल में उनके लिए काम करना संभव नहीं था। उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और इस्तीफा देने का फैसला लिया। राजभवन के बाहर नीतीश कुमार बोले,
राज्यपाल महोदय से मिलकर त्याग पत्र सौंपा है। हमने महागठबंधन की सरकार महीने से भी ज्यादा समय तक चलाया है और मुझसे जितना संभव हुआ है हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बिहार की जनता के चुनाव के दौरान जिन बातों की चर्चा की के मुताबिक हमने काम करने की कोशिश की। सात निश्चय उस पर अमल करना प्रारंभ किया। बिहार में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई शराबबंदी लागू करके।
ये थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्हें किन परिस्थितियों में इस्तीफा देना पड़ा।
इस बीच में जो चीजें उभर कर सामने आई उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं। हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से, हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले, हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। जो कुछ भी हंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है और यह बात मैंने कही, लेकिन अब वह भी नहीं हो रहा है और कुल मिलाकर माहौल ऐसा होता चला जा रहा है। अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब काम करना भी संभव नहीं हुआ।
ये थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार के सुशील मोदी एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए ले चलते हैं आपको वहां।
और ये निर्णय दिल्ली हाईकमान के पास आएगा, यानी दिल्ली संसदीय बोर्ड के सामने आएगा, वहां पर जो निर्णय होगा उसको अमल में लाया जाएगा। इसका एक मतलब यह भी है कि नीतीश कुमार की तरफ से पहल नहीं होगी, बीजेपी अपने तरफ से पहल शुरू कर चुकी है, बीजेपी फैसला ले रही है और उस फैसले के साथ वो फैसले से अवगत उसके बाद नीतीश कुमार को कराया जाएगा। यानी एक पूरी प्रक्रिया को समझे तो मध्यावधि चुनाव कोई नहीं चाह रहा है। गठबंधन के आंकड़े बहुत साफ बताते हैं, 71 सीट अगर जनता दल यूनाइटेड की है तो बीजेपी की 53 सीट है, 2 सीट लोक जनशक्ति पार्टी की है, 3 सीट आरएलएसपी यानी कुशवाहा की पार्टी की है। सबको मिला दीजिएगा तो 129 का आंकड़ा बैठता है और सरकार बनाने के लिए।
आइए सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर के पास। मणिकांत ठाकुर, आप सारे नज़ारे पर नज़र रखे हुए हैं, यह अप्रत्याशित था या आप इसकी उम्मीद कर रहे थे?
ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। हालात ऐसे बन गए थे कि राजनीतिक तौर पर या कहें कि सियासी रणनीति के तौर पर नीतीश कुमार के लिए इससे बेहतर रास्ता नहीं बचा था। लालू प्रसाद ने तो ये जिद ठान ली थी कि तेजस्वी यादव का इस्तीफा नहीं करवाएंगे और अगर नीतीश कुमार ने तेजस्वी को बर्खास्त किया तो गठबंधन तोड़ने और प्रबल जनादेश वाली सरकार को गिराने का सारा दोष वो नीतीश कुमार पर मरेंगे। तो नीतीश कुमार ने ये नौबत ही नहीं आने दी और त्याग ने जैसा मैसेज दिया है। रेहान साहब,
ये बताइए विधानसभा का गणित क्या है इस समय, किन किन पार्टियों के कितने विधायक हैं?
देखिए ये तो आंकड़े सही सही अभी मैं स्मरण नहीं आ रहा है ठीक तौर पे, लेकिन इतना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ आ जाए आराम से सरकार बन सकती है, और अगर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ हो जाए और उनके साथ कुछ लोग और किसी दल से, या जो जैसी आशंका थी कि जेडीयू से टूट के उधर जाए, तब भी सरकार बन सकती है। लेकिन यहाँ जो अब स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें जैसा मुझे लग रहा है और जिस तरह से बातें कर रहे थे इस्तीफा देने के बाद नीतीश जी, तो उससे साफ लग रहा था कि उनका कहीं ना कहीं एक रुझान जरूर बीजेपी की तरफ है, क्योंकि उन्होंने ये कहा जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी अब आगे क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के संदर्भ में अगर कह रहे हैं तो देखते जाइए कि आगे क्या होगा, और बिहार के हित में जो होगा और न्याय के साथ विकास के हित में जो होगा उसमें हमारा सहयोग रहेगा। तो इसमें उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाने जैसी कोई संभावना है, अगर ऐसा रहता तो दो टूक वो कह सकते थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि अब वो फिर से लौट के उसमें नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरी अंतरात्मा गवाह नहीं देगी, संकट आया नहीं लाया गया, अगर वो कुछ ऐसा निर्णय ले लेते, मतलब इशारा आरजेडी की तरफ था, तो ये नौबत नहीं आती। तो जब उन्होंने कह दिया है कि अब ये संभव नहीं था,
ये बताइए जिस तरह से नरेंद्र मोदी ट्वीट कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं उनके इस कदम का, अब ये माना जाए निश्चित रूप से कि बीजेपी और नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे मिलकर, या अभी इसमें कुछ संदेह है?
देखिए रान साहब, राजनीति में कुछ भी दावे के साथ कहना, और पल पल स्थितियां बदलती हैं, आगे किस तरह से बीजेपी के साथ उनकी बातें होती हैं, और ये तय है कि जो भी बातें होंगी वो बीजेपी के शीर्ष स्तर पर जो नेता हैं, या अमित शाह हैं या नरेंद्र मोदी हैं, उनके स्तर से बात होगी। यहाँ बिहार बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, मुझे लग रहा है कि वो उसमें समय लग सकता है। और लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि दावे के साथ कि कल को यही होना है। मेरे ख्याल से नीतीश जी ने भी ये इस्तीफा देकर एक समय लिया है, और वो भापेंगे, अंदाजा लगाते हैं कि आगे उनके लिए क्या बेहतर होता, और वो जान रहे। जी
मणिकांत जी, आप लाइन पर बने रहिए। इस बीच हम चल रहे हैं नीरज सहाय के पास। नीरज, इस समय सुशील मोदी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं वहाँ पटना में, आप वहाँ पर मौजूद हैं, अब तक क्या क्या कहा है सुशील मोदी ने?
सुशील मोदी के जो संवाददाता सम्मेलन का लब्बो लुहाब यही है, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मध्यावधि चुनाव नहीं चाहती है। इसका स्पष्ट संकेत वो दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, और वाइडर कॉन्टेक्स्ट में कहें तो एनडीए, वो सीएम नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं खड़ी है।
और अभी संवाददाता सम्मेलन जारी है या अपनी बात कह चुके हैं सुशील मोदी?
संवाददाता सम्मेलन खत्म की ओर ही है, क्योंकि लोग बाहर आना शुरू हो चुके हैं। अभी संवाददाता सम्मेलन के पहले विधानमंडल दल की इन लोगों की बैठक भी थी, शायद अंदेशा था कुछ ऐसा बड़ा होने का इन लोगों को। और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना मैंने सुना उसका मुझे लबोलुआब यही लगा, उन्होंने जो कहा कि भाजपा या एनडीए मध्यावधि चुनाव नहीं चाहती, इसका स्पष्ट संकेत वो दे रहे हैं कि वो लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज सहाय। मणिकांत जी, अगर आप लाइन पर हैं तो ये बताइए कि लालू कैंप इसको किस तरह से लेगा, ये इस पूरे डेवलपमेंट को?
देखिए मेरे ख्याल से लगता है कि लालू जी ने इस हद तक नहीं सोचा होगा कि नीतीश ऐसा कदम उठाएंगे। उन्होंने शुरू में तो यही लग रहा था कि वो दबाव बना रहे हैं, अंत में राजी हो जाएंगे नीतीश कुमार और बात बन जाएगी। वो यह अफोर्ड नहीं कर सकते थे लालू जी कि वो अपने बेटा को, जिनकी को आप सौंप रहे हैं, उनको पहला ही झटका लग जाए, उप मुख्यमंत्री पद से हटना पड़े, और वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। इसको वो बचाना चाह रहे थे पूरे तौर, पूरी कोशिश उन्होंने की, और इसी जिद में उन्होंने एक तरफ से संदेश ऐसा दिया जेडीयू की तरफ कि वो चाहे अपना तय कर ले, जो चाहे वो करे, ये इसने प्रभुक किया एक तरह से। और प्रवक्ताओं के जिस तरह से बयान आ रहे थे उससे तो साफ दिख रहा था कि अब ये गठबंधन रहेगा कैसे। ये आज जो नीतीश जी ने ये कहा है कि सतही बातें हो रही थी, तो उनका सीधा इशारा लालू परिवार और आरजेडी की तरफ था। और वो ये भी सर लगे हाथ कह रहे हैं कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन परिदृश्य बदल गया, डिस्कोर्स बदल गया। तो ये सारी बातें जो है ये तो साफ दिखाती हैं कि लालू जी के साथ मिलके अब वो नीतीश जी कोई राजनीति बिहार में करेंगे। मुझे लगता है कि दूध का जला शायद मट्ठा भी फूक फूक।
लेकिन ये बताइए कि लोगों के बीच क्या माहौल है, लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं, आम लोग, इतना बड़ा जो एस्पिरेशन था उनका वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है?
देखिए ये दोनों बातें होंगी। एक तरफ जो लालू जी के का जो जनाधार है या उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, और या कह सकते हैं कि उनसे जुड़ी हुई जो जनता है, उनका ये वो सामने आ रहा था पिछले कुछ दिनों से कि अगर नीतीश जी ने ऐसा कुछ किया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। उनमें एकता हो रही थी। जो लालू जी ने ये समझा था कि अगर ये अलग भी हटते हैं, गठबंधन टूटता है, तो वो आगे संभाल लेंगे। और खास करके यादव मुस्लिम समीकरण वाला जो जनाधार या उनका आजमाया हुआ जो फॉर्मूला है उसको लेके वो बहुत समन्वित रहे। तो होता, और कांग्रेस ने भी उनकी पीठ पर हाथ रख दिया, कांग्रेस भी उनके साथ हो गई थी। ये इक्वेशन वो इस तरह से बना रहे थे कि अगर नीतीश अलग हटे भी तो वो कहीं के, लालू जी सोचते थे कि वो कहीं के नहीं रहेंगे, लेकिन नीतीश जी के सामने में बिल्कुल एक मित्र की तरह फिर से घर वापसी का इंतजार जो कर लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, तो उससे तो लगता है कि नीतीश जी के सामने में एक रास्ता है। लेकिन ये फिर बात उठेगी कि वो राष्ट्रीय स्तर पर जो एक वैकल्पिक गठबंधन की जो चर्चा हो रही थी, जिसके नेतृत्व की बात नीतीश जी के बारे में सोचा जा रहा था, वो तो उसको तो एक धक्का लगा है निश्चित तौर पर।
बहुत बहुत धन्यवाद मणिकांत ठाकुर आपका पटना से। ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ, और अब आगे बढ़ते हैं। मंगलवार को नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिए भाषण पर विवाद बढ़ता दिख रहा है। आज राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच इस मामले पर खासी बहस चली। उधर लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इराक में फंसे हुए भारतीयों पर सफाई भी दी है। सुनिए नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
बात दरअसल मंगलवार की है, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाषण में महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय का एक साथ जिक्र किया था। उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई थी, और बुधवार को राज्यसभा में भी कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल जवाहरलाल नेहरू का एक तरह से अपमान किया है। आनंद शर्मा को सुनिए।
स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सम्मान से स्मरण किया जाता है। सबसे ऊपर दर्जा महात्मा गांधी का भारत में है। उन्होंने उस समय हिंदुस्तान के लोगों को हिम्मत दी थी। समय बता रहा।
Nobody's questioning that.
आप पूरा तो करने दीजिए, पूरा तो करने दीजिए। ये देखिए ना, आपने बीच में रोक दिया।
No, listen, listen. Yeah.
उसके साथ साथ आजादी के संग्राम के एक महान नायक जवाहरलाल नेहरू थे, जो हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री 17 साल रही, शहीद हुई। आज सरकार की तरफ से एक सुनियोजित तरीके से महात्मा गांधी के कद को छोटा दिखाना।
कांग्रेस के इस आरोप पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खड़े होकर कहा कि ये तो संभव ही नहीं है कि कोई सदस्य राष्ट्रपति के भाषण पर सवाल खड़ा करे, ऐसा कैसे हो सकता है? अरुण जेटली ने जवाब में कहा,
The whole speech has to be expunged. For the reason, there is a rule which even the chair is bound by, that you do not refer to high constitutional authorities and what they have said in a debate in the House.
साथ ही अरुण जेटली ने अध्यक्ष से आनंद शर्मा के बयान को कार्यवाही से हटाने की मांग की, जिसके बाद सदन में हंगामा हो गया और कार्यवाही को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
You can't have a zero hour run only for the benefit of television cameras. That is what something which is happening.
No. And उधर इराक में फंसे भारतीय नागरिकों पर अखबार में लगातार आने वाली खबरों के बाद आज लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सफाई दी। शुरुआत तब हुई थी जब कुछ समय पहले सुषमा स्वराज ने सदन में ही कहा था कि इराक में 39 भारतीय मोसूल की जेल में कैद हैं। उसके बाद कई अखबारों और खबरों में ये आया कि वो जेल अब मौजूद ही नहीं है। इन्हीं खबरों के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया था। जवाब में सुषमा स्वराज ने साफ कहा कि उन्होंने इस मसले पर सदन को गुमराह बिल्कुल नहीं किया।
मैंने बार बार सदन में ये कहा कि मेरा उनसे डायरेक्ट संपर्क नहीं है, मेरे पास ठोस सबूत उनके जिंदा होने का नहीं है, लेकिन मेरे पास ठोस सबूत उनके मारे जाने का भी नहीं है।
आखिरी में सुषमा स्वराज ने ये भी कहा कि सरकार के पास उन 39 लापता भारतीयों की आखिरी जानकारी 2016 तक की थी। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य संसद की सदस्यता छोड़ेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। वहीं केशव मौर्य के संसदीय क्षेत्र फूलपुर से बीएसपी नेता मायावती के चुनाव लड़ने की आशंकाओं के बीच केशव मौर्य के केंद्र में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
6 महीने तक बिना किसी सदन का सदस्य बने भी मंत्री बने रहने की अनुमति संविधान ने ही दे रखी है, लेकिन जब राज्य के मुख्यमंत्री, दो दो उप मुख्यमंत्री और कुछ अन्य मंत्री भी 4 महीने बीत जाने के बाद भी सदस्यता न ले रहे हों तो राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं होना स्वाभाविक है। दिलचस्प बात यह भी है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह नेता सदन भी उन सदनों के सदस्य नहीं है। चूंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा के सदस्य हैं, इसलिए उनके वोटों की अहमियत को समझते हुए राष्ट्रपति चुनाव तक इस मामले को खींचा गया, लेकिन उसके बाद भी उनकी सदस्यता पर संशय राजनीतिक चर्चाओं को हवा देने लगा है। बीजेपी के प्रवक्ता अभी भी यही कह रहे हैं कि इस पर पार्टी फैसला करेगी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं,
जिस तरह की चर्चा फूलपुर सीट को लेकर के हो रही है, ये केवल मीडिया गलियारों में हो रही है, गॉसिप के अलावा और कुछ नहीं है। पार्टी फोरम पर अभी किसी तरह की चर्चा नहीं हुई है कि फूलपुर की सीट पर इस्तीफा होगा या नहीं होगा, गोरखपुर की सीट पर इस्तीफा होगा या नहीं होगा। ये सारे नेतृत्व के निर्णय है, पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारी सबसे उच्च संस्था है, पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय लेगी। एक साथ दो सदनों के सदस्य नहीं रहा जा सकता है, तो संवैधानिक व्यवस्था का अनुपालन तो करना ही होगा। लोकसभा की सदस्यता छोड़नी हो या राज्य में रहना हो, इसका नेतृत्व ही निर्णय करेगा। ये निर्णय पहले का भी नेतृत्व का ही है और अभी आगे भी निर्णय इस पर नेतृत्व ही करेगा।
दरअसल चर्चाएं ये चल रही हैं कि यदि फूलपुर की सीट से केशव मौर्य इस्तीफा देते हैं तो बीएसपी नेता मायावती संयुक्त विपक्ष की ओर से यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इस बारे में न तो बीएसपी की ओर से अभी कोई रुझान मिला है और न ही विपक्षी दलों की ओर से इसकी कोई जानकारी सामने आई है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने राज्यसभा से इस्तीफे के वक्त मायावती के समर्थन में एकजुटता दिखाई, उसे देखते हुए इसकी संभावनाओं से इंकार भी नहीं किया जा सकता। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार सुनीता आयरन को इसकी संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं।
कांशीराम जी तो इस तरह के इलेक्शन लड़ा करते थे, जब उनको चैलेंज करना तो फैलाबाद से भी लड़े, अमित जी से भी लड़े, बट आज की बीएसपी मुझे नहीं लगता ये रिस्क लेने के लिए मायावती खुद लड़ेंगे, मुझे थोड़ा डाउट होता है। दूसरा ये है, वो तभी पॉसिबल होगा जब अखिलेश और बाकी लोग साथ में आगे खड़े हो जाए एंड अ जॉइंट ऑपोजिशन कैंडिडेट को बने, उसका तो मुझे भी इस समय एकदम आसान नजर नहीं आ रही।
2014 में फूलपुर संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीत हासिल की थी, इसलिए वो किसी कीमत पर उपचुनाव में इसे खोना नहीं चाहती है। बताया जा रहा है कि इसीलिए बीजेपी अपनी रणनीति बदल सकती है और केशव मौर्य को यूपी की बजाय केंद्र में बुला सकती है। यही नहीं, इन तीनों के अलावा दो और मंत्री ऐसे हैं जिन्हें किसी सदन का सदस्य बनना है। ऐसे में 5 सीटों की व्यवस्था करना भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। जहां तक केशव मौर्य का सवाल है तो उनके केंद्र में जाने की अटकलों को सुनीता आयरन भी सही मानती हैं, लेकिन वजह कुछ और बताती हैं।
केशव मौर्य और चीफ मिनिस्टर के टर्म्स बहुत अच्छे नहीं है, तो केशव मौर्य को दिल्ली ले जाके एक तरह से एक जो टेंशन चल रही है विद इन द गवर्नमेंट उसको खत्म करने की बात है, और केशव मौर्य बहुत ज्यादा इंक्लाइन नहीं है। अभी तक तो उन्होंने यही कहा है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड।
बहरहाल शायद इन्हीं सब मसलों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 29 तारीख को 3 दिनों के लिए लखनऊ आ रहे हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती फूलपुर सीट पर है, जिसे छोड़ने पर भी सवाल उठ रहे हैं और बनाए रखने पर भी। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
और इस बीच खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं।
कोई भी आदमी वो केस जो है पंडारक थाना कांड संख्या 131-199 दिनांक 16/11/91
केसों का विवरण दे रहे थे लालू प्रसाद यादव। और इस बीच राजेश जोशी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेश, थोड़ी नज़र रखे हुए थे अब तक लालू प्रसाद यादव क्या क्या बोले हैं, बताइए।
जी, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लालू प्रसाद यादव इस वक्त पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी आवाज़ आपने सुनी, वो जो जनता दल यूनाइटेड और उनकी राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है, उन दोनों के बीच में इतनी कड़वाहट बढ़ गई थी कि अभी अभी उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता कोई सीबीआई नहीं है, कोई पुलिस नहीं है कि हम उनके सामने बार बार सफाई दें। अगर हमको सफाई देनी होगी ये भ्रष्टाचार के केसेस के बारे में, तो पब्लिक डोमेन में देंगे। और अगर अथॉरिटीज़ हमसे कहेंगी, यानी सीबीआई और दूसरी अथॉरिटीज़ हमसे कहेंगी, उनके सामने हम ये सफाई देंगे। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता कोई पुलिस नहीं है। अभी फिर से सुनते हैं लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं।
लोअर कोर्ट नहीं, नहीं सुनेगा नहीं लोग, मतलब नहीं उनको। संज्ञान भी हो चुका है नीतीश कुमार पर, हाँ कंग्रेजेंस पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड और दस्तावेज के आधार पर। जी,
नीतीश कुमार पर सीधे हमला बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के किसी पुराने कथित भ्रष्टाचार के मामले पर लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि उस मामले का संज्ञान भी लिया जा चुका है, यानी कि एक पलटवार की तैयारी वो कर रहे हैं।
तो कोई अब हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, रियलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस।
जब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थितियां ही नहीं थी कि लालू यादव के साथ या उनकी पार्टी के साथ काम कर सकें, तो अब तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो हो ही गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जोशी आपका। और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम आज तड़के सुबह मुंबई एयरपोर्ट पहुंची है, और इस दौरान फैंस ने खिलाड़ियों का ज़बरदस्त स्वागत किया। हमारे साथी समीर हाशमी ने भारतीय टीम के कप्तान मिताली राज से बात की और पूछा कि महिला क्रिकेट के लिए कितना महत्वपूर्ण था भारतीय क्रिकेट का प्रदर्शन।
ये काफ़ी अच्छी रिएक्शन है, क्योंकि पहले भी एक्स क्रिकेटर्स क्वालिटी प्लेयर्स थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैचेस टेलीवाइज नहीं होते, तो लोगों को इतना ज़्यादा वुमेन स्टैंडर्ड के बारे में पता नहीं था। 2005 में जब हम फाइनल्स तक पहुँचे हैं और फाइनल्स भी खेले हैं, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि टीम ने क्या किया 2005 फाइनल्स में। लेकिन अभी जो मैचेस टेलीवाइज हुए हैं उसके वजह से हमने काफ़ी लोगों की इंटरेस्ट जनरेट किया है, लोगों में इंटरेस्ट, और वो काफ़ी बेनिफिशियल हुआ वुमेंस क्रिकेट इंडिया में। बिकॉज अभी जैसे एक बड़ी स्टेज होती है, जैसे टेनिस में भी सानिया मिर्ज़ा के वजह से लड़कियाँ टेनिस खेलने लगी हैं, तो इन द सेम वे मुझे लगता है कि अभी लड़कियाँ वुमेंस टीम को देख के मोटिवेट होके शायद वुमेंस क्रिकेट को एक करियर की ऑप्शन की तरह देख सकें।
किस तरह के चेंजेस आप चाहती हैं क्रिकेट फैसिलिटीज़ की बात करें फॉर वुमेन इन इंडिया, जिससे उनको फ़ायदा पहुँचेगा आफ्टर दिस वर्क?
मुझे तो फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी लगती हैं, बिकॉज बीसीसीआई के अंडर आने से इंजर्ड प्लेयर्स और उनको बेस्ट ऑफ रिहैब फैसिलिटीज़ एनसीए के लिए एक्सेस हैं, और सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है हम लोग, तो काफ़ी लड़कियां इससे खुश हैं, क्योंकि उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप सिक्योर्ड हैं, आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं, तो आप अपनी गेम पे कॉन्सेंट्रेट कर सकती हैं, और ये एक मोटिवेशन भी है दूसरे प्लेयर्स के लिए कि एक अगर आप इंडिया खेलेंगे तो आप भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स बनेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ मैचेस, ज़्यादा मैचेस होंगे इंटरनेशनल, वो अच्छा रहेगा, बिकॉज जितना मैचेस खेलेंगे उतना ही प्लेयर्स और वुमेन्स क्रिकेट का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा।
फाइनली आपने कहा है कि आप नेक्स्ट वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगी, जस्ट एक दो साल उसके बाद रिटायर हो जाएंगी, क्या इरादा है आपका, अभी कितना कंटिन्यू करना चाहती हैं, और ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि आप शायद एक बार और एक वर्ल्ड कप खेल लें?
हो सकता है मैं एक और वर्ल्ड कप खेलूं, बिकॉज ون ڈے ورلڈ کپ چار سال میں ایک بار آتا ہے, سو ہو سین فور ایئرس فرام ناؤ. لیکن ہاں, جب تک میں فٹ ہوں اور میری فارم صحیح ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اور انڈین ٹیم کو سرو کر سکتی ہوں.
بھارتی مہیلا کرکٹ ٹیم کی کپتان متالی راج. اور چلتے چلتے مکھیہ سماچار ایک بار پھر.
بی بی سی سماچار. بہار کے مکھیہ منتری نتیش کمار نے آج شام اپنے پد سے استعفا دے دیا. دکشنی پوروی فرانس کے جنگلوں میں پرچنڈ آگ لگنے کے بعد 10,000 لوگوں کو بچایا گیا. بی بی سی سماچار.
دن بھر میں آج اتنا ہی. اسٹوڈیو سنبھال رہے تھے اجیت سارتھی. ریحان فضل کو سبھی ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے. نمسکار.